ओम ओम ओम। विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण अंतर्गत 42वां श्लोक। यथा मुंजा दिशि केवम् आत्मा युक्त्या समुद्रिता शरीरत्रितया धीरहि परम ब्रह्मैव जायते। परा परात्मनोरेवम् युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैषा भागत्यागेन लक्ष्यते। जगतो यदुपादानम् मायामादाय तामसिम् निमित्तं शुद्धसत्त्वां ताम् उच्यते ब्रह्म तद्गिरा। यदा मलिनसत्त्वां ताम् कामकर्मादिदूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म तं पदेन तदोच्यते। त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम् अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते। सोऽयं इत्यादिवाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकम् आश्रयो लक्ष्यते यथा। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् पञ्चकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते। मुमुक्षु यदि स्वयं को ब्रह्म सिद्ध करना चाहता है तब पंचकोश से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। पंचकोशों के सहित ब्रह्म से एक नहीं हो सकता। पंचकोश से अपने आप को अलग कैसे करें महाराज? तो युक्ति बता दिया, अन्वय व्यतिरेक युक्ति का प्रयोग करो। अन्वय व्यतिरेक युक्ति का प्रयोग करने पर तुम्हारी बुद्धि में ये क्षमता आ जाएगी कि तुम अपने आप को कोश से अलग देख पाओगे। अभी जिस तरह कोश के सहित मैं हूं कह रहे हो, अन्वय व्यतिरेक युक्त युक्ति का प्रयोग करके फिर अपने को देखो तो तुम कोच से अलग अनुभव करोगे। ये युक्ति वेदांत में बड़ा जबरदस्त युक्ति है, अन्वय व्यतिरेक युक्ति। भगवान वेदव्यास जी ने भी भागवत के आरंभ में इस युक्ति का प्रयोग किया। भागवत के जो मंगलाचरण है उसी में ये युक्ति का प्रयोग किया है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः, अन्वय और इतर, इतर का अर्थ व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक युक्ति से ये सिद्ध होता है कि परमात्मा समस्त जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी है और इस जगत से वह सर्वथा भिन्न भी है। यथा विनिमयो तेजो बारी मृदा, यथा विनिमयो सूर्य के किरण और मरुभूमि के रेत, इन दोनों ने ऐसा समझौता किया है, कहा कि हे सूर्य का किरण, तू अकेला भी पानी नहीं दिखा पाएगा। मानो रेत ने, मरुभूमि के रेत ने ये कहा हो कि हे सूर्य का किरण, तू अकेले भी पानी नहीं दिखा पाएगा और मैं अकेले भी पानी नहीं दिखा पाऊंगा, और तुम और हम दोनों मिलेंगे तो इन उल्लू मृगों को पानी दिखा सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं? दिखा सकते हैं। हुआ यही है, परमात्मा ने भी हम उल्लुओं को जगत में सुख दिखा दिया है, सुख दिया नहीं है, सुख दिखा दिया है। तेजो बार मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्ग मृषा है, देख जिस अधिष्ठान में तीन सर्ग झूठे सिद्ध हो जाते हैं। अभी सत्य सिद्ध दिख रहे हैं लेकिन झूठे सिद्ध हो जाते हैं, कब? अन्वय व्यतिरेक युक्ति का प्रयोग करोगे तब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। अभी अभी हम आ रहे थे यहां प्रवचन के लिए, तो ब्रह्मलीन श्रद्धे स्वामी जी का प्रवचन कैसेट में चल रहा था, प्रसंग बड़ा अच्छा था। जो वस्तु जहां दिख रहा है वो वस्तु वहां मिथ्या है ही नहीं, ये निश्चय कर लेने पर तुम्हारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। ये शब्द प्रयोग किया स्वामी, उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, मुझे अच्छा लगा। आकाश में नीलिमा नहीं है लेकिन सारे दुनिया आकाश नीला है, आकाश नीला है करते फिर रहे हैं, नीला आकाश। विचार करके आकाश में नीला है ही नहीं, नीला रंग है ही नहीं, ये निश्चय कर लेने पर ना आकाश को कोई फर्क पड़ने वाला है, न तुम्हारे आंखों में कोई फर्क पड़ने वाला है, आंख को नुकसान होगी? बोलो है? फिर डरना किस बात को लेकर? जब आकाश में नीलापन है ही नहीं, बिल्कुल झूठा है, प्रतीति मात्र है, नीला रंग सर्वथा नहीं है, ये निश्चय कर लेने पर जब आंख को कोई नुकसान नहीं होता है तो डरना किस बात को? बोलो। आकाश में नीला रंग नहीं है कहने में क्या आपत्ति है? इसी तरह अधिष्ठान में जगत तीन काल में नहीं है ये निश्चय कर लेने पर तुम्हारा क्या नुकसान होगा? बोलो। तो ये निश्चय कर लेने में आपत्ति क्या है? इसी तरह शरीर मैं सर्वथा है ही नहीं हूं, मैं शरीर किसी हालत में नहीं हूं, ये निश्चय कर लेने पर तुम्हारा क्या नुकसान होगा? बोलो। जब कोई नुकसान नहीं होगा तो निश्चय कर लेने में हर्जा क्या है? शरीर मैं नहीं हूं ये कहते ही तुरंत शरीर से तुमको निकालकर अलग कर दिया जाता, क्योंकि तुमने निश्चय किया इसलिए अब तुमको इस शरीर में रहने का अधिकार नहीं है, चलो अलग कर देते हैं। है? तो सर्जरी करके तुमको अलग कर दिया जाता तो तुमको नुकसान होता है ना, तो फिर सबको आपत्ति होती, भाई नहीं महाराज अभी ऐसा मत करो, निश्चय कर लेने पर भी तुम्हारा कोई नुकसान है ही नहीं, करो निश्चय, फर्क क्या पड़ता है? तो अखंडानंद जी महाराज जी ने आगे फिर कहा, निश्चय कर लेने पर भी शरद पूर्णिमा को रात्रि में, क्योंकि ठंडियों में तो आकाश में बादल होते नहीं है और बाहर शीतल होता है, आकाश क्लीन रहता है, बाहर आकाश के खुले मैदान में निकलकर आकाश की तरफ वह जो नीला जिसमें नहीं है उसको देख देख कर बड़ा आनंद भी आता है। आनंद लेने में हर्जा क्या है भाई? वेदांत की विशेषता ही यही है बस। आनंद पूरा का पूरा लो और निश्चय करो कि ये सब झूठा है, बस निश्चय क्या करो, ये सब झूठा है, और आनंद पूरा का पूरा लो। यही तो वेदांत की विशेषता है, न हिंग लगे न फिड़किड़ी, आनंद पूरा लो। इसी तरह अन्वय व्यतिरेक जो युक्ति है वह अपने आप को ये तीन शरीर से अलग करने की युक्ति है। अलग करोगे तो फायदा क्या होगा? आत्मानम तत उद्धृत्य, इन तीन कोश से आत्मा को उद्धार करके अलग करके परम ब्रह्मैव जायते, फिर आत्मा ब्रह्म था ही, ब्रह्म तो था ही, कोषों में आकर फंस गया था, और कोष से तुम अलग करोगे तो ब्रह्म ही हो जाएगा। ये देख लो, परम ब्रह्म ही बजाए थे। तो पंचकोश विवेक करने की युक्ति क्या बताया? अन्वय व्यतिरिक्त। अन्वय का अर्थ क्या बताया? रहना, पहुंचना, उपस्थित रहना, अनुभव में आना, ये अन्वय का अर्थ है। अनुगत अन्वय माने अनुगत। व्यतिरेक का अर्थ बताया अनानुगत, न पहुंचना, न रहना, अनुभव में न आना। और जो अनुभव में नहीं आता है वो असत कोटि का होता है, जो अनुभव में आता है वो सत कोटि का होता है। तो कल हमने एक दृष्टांत दिया था भाई। प्रश्न करते हैं आत्मा की व्यापकता के बारे में। वेदांत जब ये कहते हैं, वेदांती जब ये कहते हैं कि आत्मा सब जगह है, तो सब जगह है तो अनुभव में क्यों नहीं आता महाराज? प्रश्न करते हैं। हम कहते हैं है और अनुभव में आता भी है। तीसरे माले पर आत्मा है, तुम हो, है ना? अनुभव में आ रहा है कि नहीं है? मैं यहां पर हूं, ये तीसरे माले पर हूं, अनुभव में आ रहा है कि नहीं? वेदांत क्या कहता है? तुम चौथे माले पर भी हो, यही है कि नहीं वेदांत का कहना? आत्मा सब जगह है तो तुम चौथे माले पर भी हो, पांचवें माले पर भी हो, टेरेस में भी हो, ये कहता है कि नहीं? अब मैं चौथे माले पे हूं, ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं? अभी तो नहीं आ रहा है ना? चौथे माले में है कि नहीं तुम जाकर देखो, हमारा कहना इतना ही है। अनुभव किए बिना नहीं है करके बकवास मत करो। अनुभव किए बिना नहीं है करके झूठा सिद्ध मत करो। है कि नहीं उसका अनुभव करो, तुम चौथे माले में जाओ, खुद पता लगाओ कि है कि नहीं। बताओ, अब तुम चौथे माले में जाओगे तुम्हें क्या अनुभव होगा? क्या होगा? है अनुभव होगा कि नहीं है अनुभव होगा? पांचवें माले में होगे कि नहीं तुम? अब तुम पांचवें माले में चले जाओ तो क्या अनुभव होगा? हैं? तो जिस समय तुम पांचवें माले में जाकर ये कहोगे कि मैं यहां पर हूं, तो उस समय तुम ग्राउंड फ्लोर में होगे कि नहीं? हैं? सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि नहीं हूं। ऐसे ही नहीं हूं नहीं कह देना। अब हम कहेंगे तुम ग्राउंड फ्लोर में जाओ, है तुम्हें क्या अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा पहले हमको बता दो। क्या तुमको ग्राउंड फ्लोर में पहुंचने के बाद, अरे यहां तो मैं नहीं हूं, ये अनुभव होता हो तब तो तुम्हारा ये कहना ठीक है कि मैं तीसरे माले पर हूं, ग्राउंड फ्लोर में नहीं? जबकि तुम ग्राउंड फ्लोर में जाते ही मैं हूं ये अनुभव होता है। तो तुम जहां जाओगे वहीं तुम्हें ये अनुभव होगा कि नहीं कि मैं यहां पर हूं? तो तुम किस आधार से कह रहे हो कि आत्मा व्यापक नहीं है? बोलो, इस तुम्हारे अनुभव से ये सिद्ध हुआ कि नहीं? शास्त्र तो कह रहे हैं कि आत्मा सर्व जगह है। हम तुम्हें प्रैक्टिकल अनुभव करा रहे हैं कि तुम जाओ, जहां जहां आत्मा है कह रहा है शास्त्र, शास्त्र कह रहे हैं तुम वहां वहां जाओ। सब जगह है तो जानुम में है कि नहीं है? बोल, तब तो जाओ तो सही। अब वहां पहुंचने के बाद बताना फिर है कि नहीं? सब जगह है तो जन्नत में है कि नहीं? जाओ बताना तुम्हें अनुभव होगा कि आत्मा यहां है। तो इस अनुभव से ही सिद्ध हुआ कि आत्मा सर्व जगह है, सर्वव्यापक है। अब तुम्हारी समस्या क्या है? यहां तुम हो और तुम्हारा शरीर भी है, समझे कि नहीं? इस समय में तुम चौथे माला, पांचवें माला, ग्राउंड फ्लोर, सब जगह हो, लेकिन तुम्हारा शरीर चौथे माले में नहीं है। ध्यान देना, अन्वय व्यतिरेक का ये इतने अर्थ है। तुम्हारा शरीर चौथे माले में इस समय तो नहीं है, तुम्हारा शरीर ग्राउंड फ्लोर में इस समय नहीं है। इसीलिए कभी भी वेदांत ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारा शरीर सर्वव्यापक है, कहा है, है? तुम्हारा शरीर सर्वव्यापक है ये तो नहीं कहा है वेदांत ने। वेदांत ने क्या कहा? तुम सर्वव्यापक हो। शरीर सर्वव्यापक नहीं हो सकता, शरीर परिचिन्न है, इसलिए शरीर व्यतिरेक है, क्योंकि तुम सब जगह हो इसलिए तुम अन्वय हो। तो अन्वय व्यतिरेक की युक्ति के बारे में कल बहुत विचार किया गया। स्वप्न में जब तुम जाते हो, तुम्हारा यही अन्नमय कोष जैसा अभी है वैसा स्वप्न में नहीं जाता। तुम स्वप्न में गए लेकिन शरीर स्वप्न में नहीं गया, तो इस अन्नमय कोष का स्वप्न में क्या हुआ? व्यतिरेक हो गया। तुम्हारा अन्वय हुआ, शरीर का व्यतिरेक हुआ। इसी तरह दूसरा दृष्टांत दिया, तुम गहरी निद्रा में सुसुप्ति अवस्था में जाते हो, उस अवस्था में तुम्हारा ये अन्नमय शरीर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, सूक्ष्म शरीर, ये चारों कोष सुसुप्ति अवस्था में नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुसुप्ति अवस्था में चारों कोषों का व्यतिरेक हो गया। अब तुम जब समाधि में जाते हो, साधना द्वारा समाधि में पहुंचते हो, तब समाधि में तुम्हारा कारण शरीर नहीं पहुंचता। समाधि में जब तुम जाते हो तो कारण शरीर समाधि में नहीं पहुंचता। सुसुप्ति में न किंचित अवेदिशम यह अनुभव होगा, समाधि में न किंचित अवेदिशम यह अनुभव नहीं होगा। यदि कारण शरीर समाधि में पहुंचा हुआ होता तो वहां पर भी तुमको यही कहना पड़ता, मैं सुख से सोया, कुछ नहीं जाना। लेकिन समाधि में जाने वाला व्यक्ति कुछ नहीं जाना यह शब्द प्रयोग नहीं करता। समाधि से व्युत्थान होने वाला योगी, मैं समाधि में गया, बड़ा आनंद आया, लेकिन कुछ नहीं जाना, यह शब्द प्रयोग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? कारण शरीर कुछ नहीं जानना ये कारण शरीर का स्वरूप है, और समाधि में कारण शरीर पहुंचा हुआ होता तो योगी ये कहता कि कुछ नहीं जाना, लेकिन योगी योग समाधि से व्युत्थान होता है तो ये नहीं कहता कि मैं कुछ नहीं जाना है। तो कारण शरीर की वहां अन्वय नहीं है, तो वहां समाधि में अन्नमय कोष का भी अन्वय नहीं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोष का भी अन्वय नहीं, और आनंदमय कोष का भी अन्वय नहीं। लेकिन समाधि में तुम्हारी उपस्थिति है, तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं भी नहीं था, न सुसुप्ति में कह सकते हो, न समाधि में कह सकते हो, न स्वप्न में कह सकते हो, न जागृत में कह सकते हो है? मैं फलाने जगह नहीं था, ये मरने के बाद भी नहीं कह सकते हो। समझे कि नहीं? ये बात तो तुम मरने के बाद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मरने के बाद कोई अपना अभाव सिद्ध करेगा? शरीर का अभाव सिद्ध कर सकते हो, वो तो जीते जी सिद्ध कर रहे हो कि नहीं? स्वप्न में स्थूल शरीर के अभाव का सिद्ध कर रहे हो कि नहीं, बोलो है? सुसुप्ति में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव सिद्ध कर रहे हो कि नहीं तुम? और समाधि में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर का अभाव सिद्ध कर रहे हो कि नहीं तुम? लेकिन तुम कहीं भी हो, आज तक अपना अभाव सिद्ध कर पा रहे हो? शास्त्र ने तो कहा ही है कि इन शरीरों का कहीं ना कहीं एक जगह, कहीं ना कहीं किसी जगह अभाव सिद्ध होता है। शास्त्र ने तो कहा ही है, लेकिन किसी भी शास्त्र ने भी ये नहीं कहा कि तुम्हारा किसी एक जगह अभाव सिद्ध होता है, ये शास्त्र ने नहीं कहा है। संसारी बनकर संसार में भटक रहे हो तो भी तुम्हारा अभाव सिद्ध नहीं होगा। मुक्त होकर तुम मोक्ष ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति में रहोगे तो भी वहां तुम्हारा अभाव सिद्ध नहीं होगा है? मतलब तुम क्या हो गए? कहीं भी तुम अपना अभाव सिद्ध कर न पाने के कारण तुम हो गए सत। बस किसी भी एक जगह जिसका अभाव सिद्ध कर दोगे वह असत हो जाएगा। तो इस तरह शरीर अत्रतया धीरे ही साधक पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अन्वय व्यतिरेक युक्ति के माध्यम से तीन शरीर का इस तरह व्यतिरेक सिद्ध करके, मिथ्या सिद्ध करके बैठ जावे। बयालीसवें श्लोक के द्वारा पंचकोश विवेक के बाद की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। पहले दृष्टांत दिया, यथा मुंजादिशी केवम आत्मा युक्तिया समुद्रिता। जिस तरह ये अक्सर मनुष्यों का ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहीं लॉन में बैठा हुआ होता है ना, द्रुवा का घास, गुजराती में क्या धरो क्या बोलते हैं, धरो है ना, संस्कृत भाषा में द्रुवा बोलते हैं, हिंदी में दुबो बोलते हैं है ना, तो उसी का लॉन बनाते हैं हरा घास। तो वहां यदि कोई बैठा हुआ हो तो मनुष्यों की आदत होती है कुछ न कुछ करना, बिना कुछ किए नहीं रहता है। नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत है ना। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के ये स्वाभाविक स्वभाव को इस श्लोक में कह दिया है, नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कर्म किए बिना ये कहीं भी शांति से रह ही नहीं सकता, कुछ न कुछ करता है। तो वहां बैठता है तो वो घास के जो दुबो है उसमें से निकालता है, उसके पत्ते तोड़ता है, चूंढता है, पत्ते निकालता है। तो कहते हैं यहां मुंजा ये घास विशेष है, यथा मुंज, मुंज माने घास, किसी घास विशेष का नाम है मुंज, उसके इसी का माने अंदर का कोमल कोमल पत्ता, नव अंकुर, पुराने पत्ते नहीं, पहले निकल चुके हुए जो पत्ते हैं वो उनको नहीं कहा, जो बिल्कुल अभी अभी नए नए निकल रहा है, जो पत फैला नहीं है, उसको इसी का बोलते हैं। केवल इसी का को पकड़कर खींचोगे आसान से, अंदर सहित पीला पीला कोमल कोमल पीला पीला भाग सहित वो पूरा का पूरा निकल आता है। अलोन में बैठा हुआ व्यक्ति उसको निकालता है पूरा और दांत से काटने लगता है, अक्सर सबका स्वभाव है, ये हम भी करते रहे, आप भी करोगे। आज ही घास के बीच में आपको बिठा दिया जाए, पलक्ती मारकर बैठो, गिरीश भाई बैठे जैसे, उनको नीचे आगे के आसपास में उनको वो घास दिखेगा, कोई काम तो मिलेगा नहीं, क्या करेंगे तो उसी के, तो वो छोटी सी अंदर के जो गर्भगृह में रहने वाली इसी का उसको पकड़ेंगे, फुट निकालेंगे और पीछे जो पीला पीला कोमल कोमल भाग है उसको फिर दांत में लेके थोड़े थोड़े धीरे धीरे काटते रहेंगे, चबाते रहेंगे, खाते रहेंगे, क्योंकि पहले जन्म में गिरीश भाई तो नहीं होंगे, मैं तो गधा था, पहले जन्म में गधा था, वो घास खाने की आदत थी, हैं, लॉन में बैठे बैठे क्या करेंगे, वही घास खाते रहेंगे, हैं, वो स्वभाव है। यहां कहने का अभिप्राय क्या है, वो पूरा का पूरा आता है बिना टूटे, और कदाचित वो खींचने वाला व्यक्ति उस नव अंकुर को इशिका को, सिर्फ इशिका को न पकड़ के उसके पुराने पत्तों को भी साथ में मिलाकर पकड़ लेगा, तब वो अंदर का पीला निकलेगा नहीं, आधा अंदर ही रह जाएगा, आधा बाहर आ जाएगा, ऊपर ऊपर का हरा हरा भाग तो आएगा, लेकिन अंदर का जो पीला भाग है, कोमल पीला भाग, वो अंदर से निकलेगा नहीं, क्योंकि और पत्तों के सहित खींचोगे तो नहीं निकलेगा। अरे सामान्य उदाहरण ही दे दो ना भैया, तुम लोग हम लोग करते ही है ना, तो पहले पहले शुरू शुरू में मान लो, अब तो आपके पूरे ही सिर जो है सफेद प्लेटफॉर्म हो गया, अब तो है ना, बूढ़े हो गए पूरी तरह 100% बूढ़े हो गए, अक्सर जब 25-30 साल के थे तुम लोग, हम लोग जब सिर के एक दो बाल सफेद दिखाई पड़े तो वो अच्छा नहीं लगता था, लगता था, अब तो पूरे ही सिर के सारे बाल सफेद हो गए तो उखाड़ेंगे कितनी को, तो उस समय में जब सिर के सब बाल काले हों तो एक आध दो बाल जो है सफेद दिखाई पड़ने लगे तो हम अपने ही हाथ से उसको उखाड़ने की कोशिश करते थे, आपने भी किया, हमने भी किया है वो, हैं? तो एक बाल जो पका हुआ है उसको ठीक से शीशे में देखकर और जो काले हैं उनको हटाकर खाली वही एक सफेद बाल पकड़ के खींचोगे वो जड़ से ही निकल आएगा और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो उखड़ गया। समझ में आई कि नहीं बात? ये तो तुम्हारा अनुभव की बात से बता रहा हूं मैं, मेरा अनुभव की बात तुमको बता रहा हूं, पता नहीं तुम लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया, हमने तो किया है, है? अब तो एक हो तब ना तो उखाड़ोगे, अभी भी यदि एक दो होंगे तो कलर नहीं करोगे, उखाड़ोगे, ये तो सबके सब सफेद हो गए, अब उखाड़ना तो संभव है ही नहीं,
तो कलर करने लग गए। कदाचित उसको उखाड़ते समय में दो तीन और काले बाल भी पकड़ में आ गया तो बड़ा भारी दर्द होता था निकालने में, आंख से आंसू आ जाते थे, है ना। इसलिए जैन साधुओं को जब दीक्षा दी जाती है, लुंचित केसा, तो वे लोग वही तो करते हैं दीक्षा के क्रम में, सिर के बाल को वह उखाड़ते, वही सन्यास दीक्षा है उनकी पहली विधि। सन्यास दीक्षा में सिर के बाल को उस तरह से ब्लेड से नहीं काटा जाता है, तो वो उखाड़ा जाता है, बाद में भले ही वो ब्लेड लगाए, दीक्षा विधि में वो निषेध है। तब क्या करते हैं कि वो एक एक बाल पकड़ के खींचते हैं, तो बैठा रहता है आराम से, भक्त लोग आते हैं प्रणाम करते हैं और एक बाल उखाड़ते हैं, आते हैं प्रणाम करते हैं एक बाल उखाड़ते हैं, हमने देखा है। वो दिन भर लगता है उसको सन्यास दीक्षा में, वो बैठा रहेगा, वो करते करते शाम तक उसके सारे बाल खत्म हो जाएंगे। अब कोई मेरा जैसा मूर्ख वहां पहुंच गया, चार पांच बाल को एक ही बार पकड़ के खींचने लग गया तो रोने लग जाता है, खून आ जाएगा। वो अब कहते हैं उस समय में निषेध भी नहीं कर सकता है, कहते हैं वो मत उखाड़ो ये नहीं कहना है, है? और कहते हैं यदि आंख से आंसू आ गए तो अच्छा है, दर्द हो गया तो अच्छा है, जितना दर्द होगा जितने आंख से आंसू आएंगे वह व्यक्ति उतना ही पवित्र होगा, पाप कट जाएंगे उतना ही वह शुद्ध होगा, मान्यता ही तो है और क्या, ये मान्यता है उनकी है। शरीर को जितना कष्ट दोगे ये शरीर का पाप कटेगा उतना ही वह पवित्र होगा, तो ये मान्यता है। तो एक एक उखाड़ोगे तो दुखेगा नहीं, वो यहां यही कह रहे हैं विद्यारण्य मुनि जी, एक ही साथ तुम आत्मा को पंचकोशों से अलग करने लग जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि कोश के साथ ऐसा चिपका हुआ है घबरा जाएगा, लेकिन इस युक्ति से एक एक कोश को अलग करते जाओगे तो आराम से अलग भी हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कोश मिथ्या है ये निश्चय भी कर पाओगे। या अलग करने का मतलब है, सिर से बाल अलग किए हुए की तरह अलग करना नहीं है, निश्चय करना यह है कि व्यतिरिक्त कोटि में जाने के कारण ये कोष मिथ्या है, अन्वय कोटि में रहने के कारण मैं सत्य हूं, इतना ही निश्चय करना है। दृष्टांत दिया, यथा मुंजा दिशि कैवम आत्मा युक्तिया समुद्रितः शरीरातृतया धीर ही, धैर्य तो चाहिए, एकदम धैर्य के साथ, तृतयात शरीरात, तीन प्रकार के शरीरों से आत्मा को धीर ही समुद्रता अलग करने पर, वो कोषों से अलग हुआ आत्मा क्या होगा, परम ब्रह्मैव जायते। अब ब्रह्म ये प्रक्रिया तो तुम लोगों ने शुरू से सुन चुके हो, चिदानंदमय ब्रह्म सत चित आनंद रूप जो ब्रह्म है वही मलिन सत्वों में प्रतिबिंबित होने के बाद प्राज्ञ बना था, प्राज्ञ तीन कोष में प्रतिबिंबित होने के कारण तेजस हुआ था, तेजस अन्नमय कोष में आने के कारण विश्व हुआ था, तो अन्नमय कोष के साथ मिलकर विश्व हुआ था, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष के साथ मिलकर तेजस हुआ था, आनंदमय कोष के साथ मिलकर प्राज्ञ हुआ था। अब तुम उसको तीनों कोष से अलग करोगे तो सच्चिदानंदमय तो पहले था ही, समझे कि नहीं, कर्ता भोक्ता आदि तो इन कोषों के साथ मिलकर हुआ था, कोषों को अलग कर दोगे तो वो फिर सच्चिदानंद ज्यों करती हुई है। महाकाश, जब उस महाकाश में घर बनाया तब वह मठाकाश हो गया। कौन? महाकाश। महाकाश था, उस महाकाश में तुमने जब घर बनाई तो मठाकाश हो गया। अब उस मठाकाश के अंदर घड़ ले आए तो मठाकाश घटाकाश हो गया, तो महाकाश घटाकाश हो गया। अब घर के अंदर तुम रखे रखे उस घड़े को फोड़ डालो, घटाकाश मठाकाश हो गया। अब तुम अपने हाथ से नहीं तो भूकंप को बुला लो, अपने हाथ से घर नहीं तोड़ सको तो भूकंप को बुला लो, वह एक झटके से पूरे घर को तोड़ देगा, तो मठाकाश महाकाश हो गया। उपाधि में आकर ये सब हुए थे, उपाधि के हटते ही वो जो जैसा है वैसा ही होगा। यही तो है, ब्रह्म से विश्व तेजस प्राज्ञम, प्राज्ञ तेजस विश्व बना था। उपाधि से तुम अन्वय व्यतिरेक युक्ति से अलग करोगे तो फिर विश्व तेजस हो जाएगा, तेजस प्राज्ञ होगा और प्राज्ञ परम ब्रह्म ही व जायते। यही इसी का नाम मोक्ष है। परा परात्मनोरेवम युक्त्या संभावित ही कथा एवं अन्वय व्यतिरेक युक्ति के द्वारा अपर आत्मा और पर आत्मा की एकता संभव है। समझे कि नहीं? अपर आत्मा माने विश्व तेजस और प्रज्ञ, अपर आत्मा। अब अन्वय व्यतिरेक युक्ति से इन कोषों से अलग करोगे तो वह पर आत्मा के साथ एकता इसकी हो जाएगी। दृष्टांत दिया, जैसे परा परात्मनोरेवम युक्तिया संभावित एकता, इस एकता को बताया किसने? तत्त्वमस्यादि वाक्यै सा, सा एकता तत्त्वमसि आदि वाक्य के द्वारा, भागत्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ में एकता बताई है। भागत्यागे न लक्ष्यते। अब सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद की तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा लक्षणावृत्ति से अपर आत्मा और परमात्मा की एकता कैसे सिद्ध होती है, वो लक्षणावृत्ति क्या है महाराज? क्या है वो लक्षणावृत्ति, इसके बारे में कल चर्चा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।